जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
मुक्ति मरण बंधन है जीवन श्रमिक विहग देखे है प्रतिदिन भू से नब तक दौड़ लगाते बंध ओ तिनकों के बंधन में वे पुनरपि नीड़ों में आते बार बार कह उठता है मन मुक्ति मरण बंधन है जीवन सरिता तब तक ही सरिता है जब तक तट का मिले सहारा बंधन टूटे कौन कहे फिर सरिता, कहते जल की धारा। बंधन सौम्य रूप आकर्षण, मुक्ति मरण बंधन है जीवन। बंधन सरल स्नेह बंधन पर, अगणित बार मुक्ति मैं वारू। हार अगर यह है जीवन की, जन जन यो ही मैं हारू। बंधन जीवन का अवलंबन, मुक्ति मरण बंधन है जीवन। कवि बंधन को महान बता रहा है और उसे मुक्ति नहीं चाहिए। ये कितना अलग दृष्टिकोण है। वो कहता है मुक्ति मरण है और बंधन जो है वह जीवन है। श्रमिक विहग देखे है प्रतिदिन, जैसे कोई पंछी आकाश में उड़ता है, स्वतंत्र है सारे दिन भर, घूमता है यहाँ वहाँ, पर शाम होने के बाद वापस अपने घोंसले में लौट आता है। और कवि कहता है ये घोंसला जो कि बंधन है, ये मुझे प्रिय है, क्योंकि आखिर तो वो घोंसले में आता है। श्रमिक विहग देखे है प्रतिदिन, भू से नब तक दौड़ लगाते, बंध ओ तिनको के बंधन में वे पुनरपि नीड़ों में आते। वापस अपने नीड़ में ही तो आ जाता है। और फिर कवि कहता है बार बार कह उठता है मन, मुक्ति मरण बंधन है जीवन। सरिता तब तक ही सरिता है जब तक तट का मिले सहारा, नदी तब तक नदी है जब वो बंधन में है। और जिस दिन बंधन टूट जाता है और वो नदी उफान पर होती और बाढ़ आता है तो विनाश करती है। इसलिए मुझे बंधन प्रिय है, मुक्ति प्रिय नहीं है। बंधन टूटे कौन कहे फिर सरिता, कहते जल की धारा। बंधन सौम्य रूप आकर्षण, ये बंधन बड़ा सौम्य है, ये बंधन का रूप बड़ा आकर्षण है उसमें, परंतु जब बंधन टूटते हैं तो विनाश होता है। इसलिए मुक्ति मरण बंधन है जीवन, मुझे बंधन चाहिए, बंधन ही जीवन है, बंधन ही अच्छा है, मुक्ति नहीं चाहिए। बंधन सरल स्नेह बंधन पर, अगणित बार मुक्ति मैं वारू, ऐसी मुक्ति मुझे चाहिए ही नहीं जिस मुक्ति में स्नेह नहीं। और ये जो स्नेह का बंधन है, अगणित बार मैं स्वयं को अर्पित करूं। अगर हार अगर यह है जीवन की, जन्म जन्म यूं ही मैं हारू। अगर कोई कहता है कि यह बंधन हार है तो मुझे यह हार स्वीकार है। बंधन जीवन का अवलंबन, मुक्ति मरण बंधन है जीवन। तो क्या चाहिए, मुक्ति या बंधन? स्नेह का बंधन, प्रेम का बंधन। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी कुछ ऐसे बंधन हैं जो चाहिए और जो होने चाहिए। कौन से? साथ है। पहला बंधन तो है प्रभु प्रेम का बंधन, परमात्मा प्रेम का बंधन। इस बंधन में बंध जाओ तो फिर सारे बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। अभी अभी मुरली सुनी, वरदाता को, विधाता को, भाग्य विधाता को कौन रिझाता है? वो नहीं जो आडंबर करते हैं, वो नहीं जो बाहरी दिखावा करते हैं, वो नहीं जो चतुराई करते हैं, परंतु केवल एक शब्द, एक व्रता। अपने हृदय में किसी और को घुसने मत दो। क्या करना है? अपने हृदय में किसी और को घुसपैठ करने मत दो। एक व्रता, जीवन वो बांसुरी बन जाए जिसमें केवल एक ही स्वर हो। एक व्रता, एक व्रता। देने वाला कंजूस नहीं, वो दे रहा है, परंतु लेने वाले क्या है? नंबर वार, द थर्स्ट ऑफ एवरी कप डिफर्स, हर प्याले की प्यास अलग अलग है। कोई प्याला एक बूंद से ही संतुष्ट हो जाता है, परंतु कुछ कुछ प्याले हैं जो पूरा सागर चाहते हैं। तो लेने वाले नंबर वार है, देने वाला बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। वो दाता है, वो विधाता है, वो भाग्य विधाता है और वो वरदाता है। चार शब्द है, चारों में अंतर। दाता अर्थात देना, कोई वस्तु को देना, किसी गुण को देना, किसी शक्ति को देना, वो देने वाला। भाग्य दाता, विधाता अर्थात जो विधान की रचना करता है, जो विधि विधान की रचना करता है, ऑर्डिनर, लॉ गिवर। भाग्य विधाता अर्थात उसमें भी और आगे जो भाग्य का निर्माण करता है किसी के, और वरदाता अर्थात जो वरदान दे सकता है कुछ भी, उसमें कोई बंधन नहीं है, जो चाहिए वो। तो दाता, विधाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तो देने वाला सब कुछ दे रहा है, बट द थर्स्ट ऑफ एवरी कप डिफर्स, हर प्याले की प्यास अलग अलग है। तो सबसे पहला बंधन जिसमें बंधना है वो कौन सा है? प्रभु प्रेम का बंधन, ईश्वरीय प्रेम का बंधन। इस प्रेम में बंध जाओ तो संसार के सभी बंधनों से स्वयमेव मुक्ति हो जाएगी। दूसरा बंधन है श्रीमत, श्रीमत का बंधन। इस बंधन में बंध जाओ तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तीसरा बंधन है मर्यादा, मर्यादा है सबके लिए समान है, श्रीमत अलग अलग हो सकती है। अगला बंधन है रूहानी दिनचर्या का बंधन, दिनचर्या, टाइम टेबल, जो आज बाबा ने कहा है। अपने आप को एक रूटीन में ढाल लेना, एक टाइम टेबल सेट कर लेना, ये करना है ये करना है, एक चेकलिस्ट कि जीवन में ये सब होना चाहिए एक दिन में, एक बकेट लिस्ट जिसको कहते हैं, ऐसी एक बकेट लिस्ट कि ये किया, यस, अमृत वेला किया, किया, मुरली सुनी, अध्ययन किया, किया, प्रकृति की गोद में गए कि नहीं गए, सनगेजिंग, बेयर फुट वॉक, डाइट, याद, ट्रैफिक कंट्रोल, जो दिनचर्या बनी है वो रूहचर्या। तो प्रभु प्रेम पहला, दूसरा श्रीमत, तीसरा मर्यादा, चौथा रूहानी दिनचर्या, पांचवा सेवा। सेवा का बंधन कैसा बंधन है? बहुत मीठा बंधन है। इस बंधन में अपने आप को बांध लो, क्योंकि इस बंधन में अगर बंधे रहेंगे तो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। और जो लोग खाली बैठे हैं और जिनके पास बहुत टाइम है, वो किस में लग जाते हैं? व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ तलाशने में। क्या कहा मुरली में बाबा ने 23:11:9 की? एक व्रता, जो एक व्रता है उसे किसी कान की तलाश नहीं है, किसी हाथ की तलाश नहीं है। व्यक्ति किसको खोजता है? किसी कान को जो मुझे सुने। कौन चाहिए? कान, कान चाहिए। शेयर करूं, उसको बताऊं, उसको सुनाऊं। और किसकी तलाश करता है? एक हाथ की, जिसको पकड़ूं, जिसका सहारा लूं। और किसको ढूंढता है? किसी कंधे की, जिस पर सिर रखकर आंसू बहाऊं। और किसकी तलाश है? किसी गोद की, जिस पर लेटकर सो जाऊं। और किसकी तलाश है? किसी आंख की जिसमें करुणा हो, प्रेम हो। और किसकी तलाश है? किसी मुख की जो प्रशंसा करे, और किसकी तलाश है, किसी हृदय की जो मेरे लिए प्रेम से भरा हुआ, जो मुझे समझे, मुझे जाने, मेरी भावनाओं को समझे। और क्या तलाश है, किसी के समय की, मुझे समय दे, सपोर्ट दे। वरदाता सब कुछ दे रहा है, उससे न लेकर मनुष्यों के पास जा रहे, कटोरा लेकर उसको क्या कहेंगे। भगवान को भी आश्चर्य है, ये क्या करते हैं। स्वयं भगवान जो सभी आश्चर्यों से परे है, उसको भी आश्चर्य लगता है कि ये कर क्या रहे हैं। तो अगला बंधन कौन सा बताया, सेवा का बंधन, जिसमें बिजी रहना है, अपने आप को व्यस्त रखना है, टाइम ही नहीं है, एक मिनट भी टाइम नहीं है व्यर्थ की बातें सुनने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए, करने के लिए। ऑलवेज हायर कॉन्शियसनेस में स्थित है, नीचे आना ही नहीं है, क्योंकि नीचे कचरा है। पांडव भवन के बाहर आज हमने देखा, वो लिखा है गीला कचरा, सूखा कचरा, आज ही नजर पड़ी उधर बाजू में है, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो कचरे में डाल दो बस, बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाना है। अगला बंधन है ब्राह्मण परिवार का बंधन, ये परिवार किला है सुरक्षित रहने के लिए। इससे बाहर गए तो क्या होता है, आया स्टार्ट लौकिक, ये प्रकंपन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर मन में हलचल होती, कर्षण उत्पन्न होता है, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, पैसा कुछ ना कुछ खींचता है। और सातवां बंधन है ये यज्ञ, जैसे मधुबन एक स्थान है जिसकी सीमाएं हैं, यज्ञ इज मधुबन विदाउट वॉल्स, वो मधुबन जिसकी कोई दीवारें नहीं, उस मधुबन को यज्ञ कहा जाता है। न दीवारें है, न छत है, न बाउंड्रीज है, मधुबन साकार है, यज्ञ निराकार है। यज्ञ कोई व्यक्ति नहीं, यज्ञ कोई स्थान नहीं, यज्ञ कोई व्यवस्था नहीं, परमात्मा की व्यापक उपस्थिति का नाम यज्ञ है। प्रभु का विस्तार ही यज्ञ है, परमात्मा की अदृश्य उपस्थिति यज्ञ है। उस यज्ञ के बंधन में बंध जाना, मराठी कवि है संत थे तुकाराम, वो कहते हैं भक्ति वाचु न मुक्ति ची मत जड़ली रे व्याधि, भक्ति करते करते परमात्मा प्रेम में खोते खोते मुझे क्या इच्छा हो गई है कि मुक्त हो जाऊं। जैसे मुक्ति प्रथम है और ईश्वर एक साधन है उसके लिए, हे प्रभु, हे विठला, विठल भाई, मीत करा अपराधी, हे प्रभु मैं अपराध किया हूं, मैंने क्या कर दिया, ये मतलब ईश्वर को टूल बना दिया, साधन, मुख्य लक्ष्य है मुक्ति और ईश्वर को माध्यम बनाया एक। भक्ति वाचु न मुक्ति ची मज दड़ ली रे व्याधि, विठला मीत करा अपराधी, ये मेरे से कैसा अपराध हो गया, कैसा पाप हो गया कि अब मेरे लिए लक्ष्य हो गया मुक्ति, जबकि ईश्वर हो गया एक साधन, उसकी भक्ति, उसका प्रेम ही खो गया। विठला मीच खरा अपरे अपराधी ज्ञानेशाचे अमृत अनुभव। इतना ज्ञान में आगे बढ़ गया, इतना ज्ञान में आगे बढ़ गया, इतने आध्यात्मिक जीवन में अनुभव होने लगे। अनुकंपे से नेत्री आसव, मेरी आंखों में उसकी करुणा, उसके आंसू बहते हैं। परंतु स्वप्न तरलते नकड़ शैशव वित्ते विले त्यात कधी। परंतु जो बचपन की निरागसता थी, जो निश्चल भाव था, वो खो गया। संत क्या लिख रहा है कि मैं इस आध्यात्मिक जीवन में इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो गए, मेरी आंखों से करुणा के झरझर आंसू बहते हैं। अनुकंपे चे नेत्री आसव स्वप्न तरलते नकड़ शैशव विले त्यात कधी। विठला मीच खरा अपराधी। ये कैसा अपराध हो गया? ये स्पिरिचुअल अपराध है कि जिसमें ज्ञान की प्यास, मुरलिया इतनी ज्यादा पढ़ ली और टेस्ट इतनी ज्यादा दे दी और उसमें नंबर इतने ज्यादा आ गए कि वो मुरली किसकी है वो ही भूल गया। स्वप्न तरलते नकड़ शैशव, वो जो बचपन की निरागस था वो कहाँ खो गई पता नहीं। संत तुक्याची अभंगवानी इंद्रायणी चे निर्मल पानी मीच बुड़विल्ला दुष्ट यौवनी करुणे चाहानी दी। हे प्रभु, मैंने अपना यौवन कहाँ डुबो दिया? शरीर की वासनाओं में, शरीर की सुंदरता में। जो शरीर की सुंदरता की तरफ आकर्षित होता है वो ईश्वर की सुंदरता से अपने आप दूर चला जाता है। दुष्ट यौवनी, ये यौवन बड़ा दुष्ट है। ये शरीर का आकर्षण, ये शरीर का सौंदर्य, ये शरीर की वासनाएं, शरीर की भोग वृत्ति, ये शरीर, ये रूप, ये स्पर्श, ये आलिंगन, इन सब में मैंने ये क्या कर दिया? मीत बुड़विला दुष्ट यौवनी करुणे चाहा निधि। जबकि करुणा का सादर सागर सामने खड़ा खड़ा था मेरे, संतों की वाणी सामने खड़ी थी मेरी, फिर भी मैंने ये क्या कर दिया? विठला मीत सखरा अपराधी। सरलश शीर्षाव स्वच्छंदीपन नुरले यौवन नुरले मीपन। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर, अब शरीर की वासनाएं मर गई। स्वच्छंदीपन अब समाप्त तो हुआ, फिर भी स्टिल परीना रंगले प्रमत्त है मन। फिर भी ये मन वासनाओं से अभी तक छूट नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है? देख लिया सारी शरीर की वासनाएं, देख लिया शरीर के सारे भोग यौवन, फिर भी परी न रंगले प्रमत्त है मन। ईश्वर की प्रेम में ये मन अब तक नहीं रंग गया, अभी तक ही शरीर की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, भोग विलास उसे खींचते हैं। विठला मीच खरा अपराधी। तुझा चिंतनी कधी, तेरा चिंतन अब तक क्यों नहीं अंदर घुसता है? ये मुझसे अपराध हो गया। भक्ति वाचुन मुक्ति ची मत जड़ली रे व्याधि। ये कैसी व्याधि है? इसलिए मुक्ति क्या है? मुझे नहीं चाहिए। कभी क्या कहता है, बंधन ही ठीक है, मुक्ति मरण बंधन है जीवन, ये बंधन ही मुझे ठीक है। तो अपने आप को बंधन में क्या करो, बांध लो, यही उसे राजी करेगा। ये एक व्रता ही उसे राजी करता है, ये एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा ही उसे राजी करता है। एक मत ही उसे राजी करता है, एक रस और कोई रस आकर्षित ना करे, बस ये ऐसी स्थिति ही वरदाता विधाता को राजी करता है। उसे चतुराई वाले बच्चे बिल्कुल प्रिय नहीं है, जो कहते हैं आप साथी तो हो पर कोई तो चाहिए ना साकार में, कोई कान, कोई हाथ, कोई कंधा, कोई हृदय, कोई मन, कोई गोद, कोई मुख, किसी का प्यार। परमात्मा उनके लिए केवल स्मृति नहीं, साकार उपस्थिति है। वो क्या अनुभव करते हैं उसको, जैसे साकार उपस्थिति है कोई, अ लिविंग प्रेजेंस, जीवंत उपस्थिति। तो ये थी पहली मुरली। आज दो सूत्र है, सबसे पहला टाइम टेबल और दूसरा अवज्ञा है। क्या कहा बाबा ने, अमृत वेला ही टाइम टेबल बना लो। अमृत वेला सबसे पावरफुल टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम है। सुबह उठते ही सबसे पहले जहां आंख पड़ती है, अगर कोई महावाक्य पढ़ लिया तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, और दिन भर में वो छोटा सा एक छोटी सी एक लाइन भी हमारी रक्षा करती है, क्योंकि किस समय वो पढ़ा है वो महत्वपूर्ण है। तो बाबा ने कहा सुबह सुबह क्या कर लो, अपना टाइम टेबल, अपनी एक दिनचर्या बना लो, मन की, बुद्धि की, आत्मा की। और जो दिन भर में छोटी छोटी अवज्ञाएं होती है वो क्या होती है, उसी बोझ की तरह है, जैसे 63 जन्म के पाप है वो कितना भारी करते हैं, उसी तरह ये अवज्ञाएं भी भारी करती है। उठ तो गए अमृत वेला, परंतु नेमिनाथ मिसल, सो रहे। छोटी छोटी अवज्ञाएं, लिटिल लिटिल डिसोबीडियंस, और खुश हो रहे, हमने पाप तो नहीं किया, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने निगेटिविटी तो नहीं फैलाई, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया। ये वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति कहता है मैं विदेश गया और विदेश जाके मैंने $500 बचाए। उसको मित्र ने पूछा कैसे, वो कहता जब मैं विदेश गया एक सड़क थी हाईवे, वहां पर थूकना मना था, अगर कोई थूकेगा तो $500 फाइन, मैंने थूका ही नहीं, बचाया ना $500। तो वो उसमें खुश है, तो इसको क्या कहेंगे वहां की सरकार, वहां के लोग कोई ये सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। टाइम टेबल अवज्ञा है, ये छोटी छोटी अवज्ञा क्या हो जाती है, बोझ बन जाती है, भारी कर देती है मन को, बहुत भारी करती है। तो ये दो सूत्र हैं आज के, तो आज के बाबा के महावाक्य, साधना के 75 दिन पूरे हुए, 75, आज का 76 दिन, युगांतर का द्वार, अमृत वेला। आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। आज समर्थ आप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे, एक है सदा समर्थ, दूसरे कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते, लेकिन जहां समर्थ स्थिति अब अव्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकते। बाप दादा देख रहे कि कई बच्चे की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते, चाहते नहीं है लेकिन आ जाते। विकर्मों की स्टेज का तो मेजॉरिटी ने मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर दिया, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें डैश नहीं है। व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सुनना और सोचने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्यों व्यर्थ में इतना आकर्षण है? ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो उसको उतने पौष्टिक और चटपटे, ऐसा क्या है उसमें, वो कौन सी चटनी में, कौन सा वो कहां से कौन सा मसाला है उसमें, वो किस कहां से, श्रीलंका कहां से आते हैं ये मसाले जिसमें इतनी चटपटी बातें हैं, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। हम सड़क से गुजर रहे हैं, रास्ते में देखा दो व्यक्ति है और एकदम उनका झगड़ा हो गया, एकदम रुक के देखते हैं, और थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद दोनों की दोस्ती हो गई, मजा ही खत्म होता है। इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। जब तक झगड़ा चल रहा था अंदर से चाहते थे कि ये चले थोड़ा और, थोड़ी और निंदा हो, थोड़ी और ग्लानी हो, थोड़ी और कुछ हो, मारपीट हो, हाथापाई हो, कुछ तो हो। और जैसे ही दोनों गले मिलने लगते हैं तो फिर साइकिल लेके जा रहे थे, हटाओ चलो आगे, साइकिल रोक के, गाड़ी रोक के लोग देखते हैं झगड़े, क्यों? उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी रस है। मनुष्य के मन का रस निगेटिविटी में बहुत है। किसी व्यक्ति के विषय में 100 सत्य बातें बनाओ, बताओ, हम स्वीकार नहीं करते, प्रूफ चाहते, पर एक निगेटिव बात अगर उसके प्रति सुन लिया, तुरंत अंतर मन में उसको धारण कर लेते हैं, उसको सत्य मान लेते बिना प्रूफ के, बिना उसके सत्यापित हुए। कंफर्मेशन की आवश्यकता ही नहीं असत्य को। कंफर्मेशन किसके लिए चाहिए? प्रूफ चाहिए सत्य के लिए। असत्य को कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए। ट्रुथ इज सेंसर्ड। इस संसार में ट्रुथ क्या है? सेंसर्ड। साइंस इज स्पॉन्सर्ड एंड ट्रुथ इज सेंसर्ड, ऐसा कहा जाता है। साइंस जो है वो क्या है? स्पॉन्सर्ड। वो थोड़ी ना बताता है सत्य क्या है। ये कर लो तो स्वस्थ बन जाओगे, ऐसा कोई बताता है रिसर्च? ना, वो तो उलझा के रखते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, ये करो वो करो वो करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये टॉनिक लो वो टॉनिक लो तो ताकत आएगी, ये तेल यूज करो तो बाल वापस आएंगे। तेल बेचने वालों कोई बाल नहीं है। विटामिन्स की कितनी गोलियां है, कितने पैकेट्स आते हैं वो डब्बे डुब्बे, इतने महंगे महंगे। फूड इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, प्रोग्रामिंग की है एकदम साइंटिफिक, अच्छे से प्रोग्रामिंग कर रखी है मन की, कि ये करो वो करो, ये करो तो वो मिलेगा, ये खाओ तो वो मिलेगा, ये खाने से वो होगा, वो खाने से वो होगा। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, सब जगह व्यर्थ भरा पड़ा है। जितनी खबर चटपटी उतना उसमें व्यर्थ। कौन सी मुरली है ये? अव्यक्त महावाक्य बाबा के। जितनी न्यूज चटपटी होगी उतना उसमें व्यर्थ होगा, अव्यक्त महावाक्य है। कौन सी मुरली है? शायद 2010 की है, 31 दिसंबर, एक बार देख लेना। माया के दो रूप, पहला व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं राइट हूं, ये मुरली है। डबल विदेशी से मुलाकात है या किससे है बता नहीं, पर जितनी न्यूज चटपटी होगी उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा, उतना उसमें व्यर्थ होगा, बाबा ने कहा है। इसलिए ये सब चीजों में जीरो इंटरेस्ट। कौन कहाँ जा रहा है, किसने क्या किया, ये इधर जाता है उधर जाता है, ये किया वो किया, व्हाट इज दैट टू यू? 95, हाँ करेक्ट, 95, 31, 16 मार्च 95 है, राइट। क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपने मन से समर्थ स्थिति को का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों पर बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में भी बड़ी पोजिशन वाले जिन्हों को आप IP या VIP कहते हो, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते, तो आप कौन हो? वह भल VIP, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते, आप कितनी भी आगे लगा दो तो कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होगा। आप विश्व के नवनिर्माण के डैश हो, आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले, तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंचा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते। तो सबसे पहला क्या कमरा है? अमृत वेला खाली योग नहीं करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। बाबा ने कहा अमृत वेला भाषण लिखो, अमृत वेला दिनचर्या सेट करो, अमृत वेला चिंतन करो, मनन करो, अमृत वेला रूह रियान करो, अमृत वेला कविता लिखो। अमृत वेला ही सब कुछ होता है। जितने कवि होते हैं, जितने गीतकार होते हैं, जितने संगीतकार होते हैं, उनको वो जो ट्यून होती है ना सॉन्ग की, वो टच होती है, इसलिए गीत कालजयी हो जाते हैं कुछ कुछ सदा के लिए, क्योंकि वो गीत उन्होंने नहीं बनाए, उनको किसी अज्ञात क्षण में वो ट्यून ने टच किया है। शब्द साधारण है, कवि प्रदीप देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई, उसमें कौन सा गीत है, कौन से म्यूजिक है, बहुत ज्यादा ढोल वाजे बज रहे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा संगीत है, परंतु कालजयी हो गए वो गीत, क्योंकि अशरीरी अवस्था में वो टच हुए। When you are in alignment with the universal rhythm, तो ये था पहला। तो पहला काम का आज का कार्य क्या करना है, जब भी घड़ी को देखो तो सोचो now is the divine time, या ईश्वरीय समय है। वो घड़ी को देखो, उधर है, उधर भी देख लो, जब भी घड़ी को देखो तो सोचो this is divine time, ये समय मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा कार्य आज करना है, एक सैंड क्लॉक होती है ना, रेत घड़ी, हो सके तो उसको खरीदना है, ज्यादा महंगी नहीं है, 100-150 रुपयों की आती है क्या इधर, सैंड वॉच, सैंड क्लॉक, रेत की घड़ी, एक घंटे वाली आती है, 30 मिनट की भी आती है, उसको रखना है और सोचना है कि ये जो समय है अमृत है, ये समय कितना महत्वपूर्ण है। कई लोग उसको रखते हैं अपने केबिन में, अपने टेबल पर रखते हैं और ऑफिस में रखते हैं और देखते हैं अभी एक घंटे के अंदर, एक घंटे का टाइम सेट, एक होता है वो घड़ी, उसको इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जो होती है ना उसमें कुछ तो अलग होता है, वो सामने रखो कि रेत गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, कि अभी इतना ही बची है, फटाफट फटाफट सोचो मुझे 10 मुरलियां पढ़नी है एक घंटे में, ये खत्म होने तक फटफट फटफट फटफट, बुद्धि यहाँ वहाँ जाएगी नहीं कहीं, पूरा जब हो जाएगा पूरा उसके बाद ही रुकेंगे। तो वो एक नियम है, वो एक मन को हमने बंधन दिया है कि ये करना है, स्वराज्य अधिकारी का एक लक्षण है। तो हो सके तो ये खरीद लो, जो नहीं खरीद सकते कहते हम गरीब है, गरीब है, गरीब है, हमें बिल्कुल पैसा नहीं है, हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, उनको कुछ कहो तो कहते बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं, और उधर बेटों बेटी की शादियों में लाखों करोड़ों खर्च करके आते, हॉस्पिटल में आते तब गरीबी पूरी उभर कर बाहर आती है। गरीबी, दादी ने कभी, किसी एक बहन ने अनुभव सुनाए तो प्रकाश मारी दादी ने बहुत पहले कभी कहा था, माताएं आई थी कि यज्ञ के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करो, माताओं ने कहा ना 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 माँ दादी, हम बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब है, हमको तो पैसा ही नहीं आने के लिए, बड़ी मुश्किल से मधुबन में पहुंचे हैं। और वही सारी माताएं शाम को मार्केट से अपनी बहुओं के लिए और सारी खरीदी करके आ रही है, शॉपिंग करके, उसके लिए सारा पैसा है, अव्यक्त मूल्य। एक माता मिली थी, कह रही थी कि मुझे ना आपसे बात करनी है, प्राइवेट में बात करनी है, थोड़ा क्लास के बाद में, अभी ट्रोली हो जाने दो। फिर वापस इधर मिली, फिर वो वहां मिली, फिर वो नीचे मिली, क्या बोली, ये जो क्लास जो भेजते हैं ना आप लोग ग्रुप में, उसको जो डाउनलोड करते हैं उसमें कितना खर्चा आता है, वो जो 1 MB 3 MB का होता है ना, उसको डाउनलोड में कितना खर्चा आता है। ये सब ठीक है, पर जो करोड़ों उधर खर्च कर दे होते हो, तो यहाँ खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, मुरली खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बाकी सब कार्य करने के लिए पैसे है संसार के। आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मना और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, इसके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई। एक छोटी आज्ञा, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो लेकिन जैसे बाप की आज्ञा, उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो, शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा के साइलेंस भी मिक्स तो हो जाती है। बाप दादा अगर हरेक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। 1 week तो आदि आज्ञा मानते हो, नेमिनाथ बनते हो लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो, इसको क्या कहेंगे। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञा जैसे आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो, इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन करते क्या है, ले लेते, दुख तो देते बिल्कुल नहीं क्योंकि उतने दुष्ट नहीं है हम कि दूसरों को दुष्ट दुख दे, परंतु करते क्या है, ले लेते हैं। हर्ट, आई गेट हर्ट, लोग कहते हैं ना मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, कल भी एक बहन कह रही थी कि मुझे बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, क्या करूँ, हर्ट होने का स्वभाव, सुनी हुई बात न चाहते भी मन में घुस जाती है, यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। हम दूसरों के मुंह में पट्टी लगा सकते हैं क्या? नहीं। कान में रुई घुसा सकते हो अपने। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्म से है, लेकिन अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत डैश गति है, ये कोई ये गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसे स्थिति चाहते हो वैसे अनुभव करने नहीं देते। छोटी छोटी अवज्ञा है, वो टूटती है तो भारीपन आता है, बोझ होता है, बेचैनी होती है। फिर कान की आवश्यकता है। क्या चाहिए फिर? कान किस लिए? खाली करने के लिए। किसको जाके सुनाऊं कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये भारीपन लग रहा है। कचरा क्यों करके रखा? तीसरा कार्य है आज का ब्रह्मा भोजन। भोजन करते समय 2 या 3 मिनट के लिए उसे समर्पित करना है, उसको दृष्टि देना है। ये छोटी सी आज्ञा है पर ये बहुत काम की है। और लास्ट आ गया। हाँ, ऐसी 3 बातें हमारी। दो प्रकार की समय, 2 प्रकार का, एक भीतर का समय, एक बाहर का समय। बाहर का समय वो घड़ी दिखाती है, पर एक समय भीतर भी है, आंतरिक। हमारी जो भीतर की दिनचर्या, आत्मा की, उस दिनचर्या को कौन डिस्टर्ब करता है? वो ऐसे 3 3 बातें, और उनका निराकरण करने के लिए क्या किया जाए? उदाहरण, किसी के बोल। उदाहरण, किसी के शब्द, किसी के स्वभाव। तीसरा, चेंज ऑफ प्लेस। आप अभी यहाँ हो, आपको कहा कि नीचे 4 दिन के लिए जाना है। नीचे 4 दिन गए, नया स्थान, नया कमरा, नया पार्टनर जो रात भर जोर जोर से खर्राटे लेते रहता है, नया डिपार्टमेंट, नया बॉस, दिनचर्या खत्म। या मौसम में चेंज, मौसम चेंज हुआ और इधर दिनचर्या चेंज हो गई। रोज वॉकिंग की आदत थी, बारिश ही चल रही है, कैसे करे? डिस्टर्ब हो गया तो इंटरनल दिनचर्या भी चेंज हो गई। तो हमारी इंटरनल दिनचर्या चेंज ना हो, तो ये ऐसे 3 कारण जो डिस्टर्ब करते हैं हमें, और उसका क्या किया जाए, खुद ही खुद के लिखने। तो ये आज के 4 होमवर्क है। पहला होमवर्क बताया, जब भी घड़ी को देखो तो सोचो दिस इज डिवाइन टाइम। दूसरा, जब भी एक ये घड़ी ले लो, रेत घड़ी, उसको रखो, बहुत मजा आता है। उल्टा सीधा पूरा हो गया 1 घंटा, तो फिर उल्टा। 30 मिनट की आती है, 1 घंटे की भी आती है, ऑनलाइन भी मिलती है, नहीं तो ले लो। और ये जैसा ही कहेंगे, अभी अगला प्रश्न आएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है मत खरीदो, चित्र बना दो उसका। एक चित्र तो बना ही सकते हैं। स्पॉन्सर। फिर ब्रह्मा भोजन, भोजन तुरंत टूट नहीं पड़ना है उसके ऊपर, स्वादिष्ट। और तीसरा, ये 3 बातें आज के प्रश्न। मुरली की डेट थी कौन सी? 23/11। जब आत्मा एकरता बन जाती है तो उसकी विशेषता क्या होती है? उसका दिल ओम शांति मोड में रहता है, उसे साथी की जरूरत रहती है, उसे दूसरों को सुना, वह दूसरों को सुनाती रही, वह बोझ महसूस नहीं करती। एकरता बनने के बाद क्या होता है? बोझ महसूस नहीं करती, हल्कापन आ जाता, क्योंकि सब एक से है, सारे रस एक से, एक की स्मृति, एक से प्यार, एक बाप दूजा न कोई। वरदानी आत्मा को कौन सी विशेष, कौन सा विशेष वरदान प्राप्त होता है? वो योग, योग आसन में स्थिर रहता है, वह किसी सभी को टोली देता है, वह सेवा में आगे नहीं बढ़ता, वह निराकार को साकार रूप में अनुभव करता है। तो निराकार साकार उपस्थिति हो जाती है उसके लिए। वरदाता को सबसे प्रिय शब्द कौन सा है? शॉर्टकट, योगी, सेवा, तपस्या, एकव्रता। वरदाता को राजी करने में कितने पाठ याद रखने हैं? सॉरी, वरदाता को राजी करने में कितने पाठ याद रखने हैं? 1 पाठ, 7 पाठ, 100 पाठ, 3 पाठ, 1 पाठ। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी है तो डैश भी है। चित्र, चतुराई, क्रेडिट कार्ड, अच्छाई। चित्र, चित्र, रॉन्ग। चतुराई, अपनी जिम्मेदारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन डैश से पास होते हो, धक्के से पास होते हो, मुश्किल से, धोखे से, जुगाड़ से। उत्तर है धक्का। अपनी जिम्मेवारी समझते हो, ठीक है, तब परिस्थितियों में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन चतुराई से पास होते हो। सब कुछ सौंप दिया, जिम्मेदारी उसकी, मुरली में आया है ये। एक व्रता अर्थात सदा एक, सदा डैश में एक हो, वृत्ति में, दृष्टि में, अपने पॉकेट में, संस्कार में। इसके लिए मुरली पढ़नी पड़ेगी। एक वृत्ति में, वृत्ति में एक हो। दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में से डैश रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि डैश बहुत जल्दी राजी हो जाता है। वरदाता, वरदाता भोलेनाथ, वरदाता, वरदाता। वरदानी आत्मा हर समय हर परिस्थिति में वरदानों से के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है। सही है या गलत? सही, सही है या गलत? बाप दादा के पास जन्म, सबकी जन्म पत्री नहीं रहती है, रहती है। तो ये था दसवां। हाँ, नौ सुनाए थे? नहीं, दस सुनाए। अच्छा, बर्थ कंट्रोल वाला एक था, एक बाप दूसरा ना कोई वाला था, भंडारी भंडारी वाला था, आवश्यकता इच्छा वाला था, नर्वस वाला था, ठीक है, चिल्लाना चलाना वाला था, राजी रूहानी सीरत वाला था, नहीं वाला था, समय व ऊर्जा बचाने हेतु वाला था, क्यों? हाँ, और पहला था इच्छा मात्र विद्या वाला, दस। मन से भाग्यवान आत्मा कैसी स्थिति वाली होती है? इच्छा मात्र अविद्या हो गए ना दस। तो ये थे आज के 10 प्रश्न, 2 सूत्र, 4 होमवर्क ना। जान हाजिर। ओम शांति। जान हाजिर है।
ओम शांति। तो आज की कविता है जान हाजिर है। इस ब्राह्मण जीवन के जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, धारणाएं हैं, उस पर ही कविता बनाई है। तो कविता का शीर्षक जान हाजिर है। जान हाजिर है तुम्हारे प्यार के खातिर ओ भगवान। जान हाजिर है तुम्हारे प्यार के खातिर ओ भगवान। दिल में तेरे प्यार का दीपक जगा करके रखें, दिल में तेरे प्यार की मूरत सजा करके रखें। श्वास की हर लय में बस तेरा ही है स्पंदन, बस तेरा ही है स्पंदन। जान हाजिर है तुम्हारे प्यार के खातिर ओ भगवान। नैनों के झरोखे से हम तुमको, नैनों के झरोखे से हम तुझको निहारा करें। गर नजर न आए तो तुमको पुकारा करें, गर नजर न आए तो तुमको पुकारा करें। दिल की हर धड़कन में तुझको समा दूं हरदम, दिल की हर धड़कन में तुझको समा दूं हरदम। जान हाजिर है तुम्हारे प्यार में ओ भगवान। अगला है जान हाजिर है तुम्हारे ज्ञान के खातिर ओ भगवान। जान हाजिर है तुम्हारे ज्ञान के खातिर ओ भगवान। बन ज्ञान की मुरली चहूं और गुंजन करूं, बन ज्ञान की मुरली चहूं और गुंजन करूं। बन ज्ञान की सरिता चहूं और सिंचन करूं। रग रग में समाता चलूं तुम्हारे ज्ञान की वाणी ओ भगवान। रग रग में समाता चलूं तुम्हारे ज्ञान की वाणी ओ भगवान। जान हाजिर है तुम्हारे प्यार के खातिर ओ भगवान। अगला है जान हाजिर है तुम्हारी याद के खातिर ओ भगवान। याद की ज्योति जलाए किरणे बिखेरें शक्ति की, याद की ज्योति जलाए किरणे बिखेरें शक्ति की, संसार से तम को मिटाएं लाए खुशियां प्रकाश की। विश्व को हम हैं बनाए दिव्यता का एक उपवन, विश्व को हम हैं बनाए दिव्यता का एक उपवन, जान हाजिर है तुम्हारे प्यार के खातिर ओ भगवन। नेक्स्ट, जान हाजिर है तुम्हारी श्रीमत के खातिर ओ भगवन, जान हाजिर है तुम्हारे श्रीमत के खातिर ओ भगवन, कदम कदम बढ़ते चलें श्रीमत को ले साथ हम, कदम कदम बढ़ते चलें श्रीमत को ले साथ हम, हर मुश्किल को पार करें विश्वास की ले ढाल हम, हर मुश्किल को पार करें विश्वास की ले ढाल हम, मुश्किलों को दे चुनौती जब साथ है मेरे भगवान, मुश्किलों को दे चुनौती जब साथ है मेरे भगवान, जान हाजिर है तुम्हारे प्यार के खातिर हो भगवान। लास्ट है, जान हाजिर है तुम्हारे यज्ञ के खातिर हो भगवान, जान हाजिर है तुम्हारे यज्ञ के खातिर हो भगवान, हड्डी हड्डी कर समर्पण यज्ञ की बलिवेदी पर, हड्डी हड्डी कर समर्पण यज्ञ की बलिवेदी पर, स्वच्छ और पावन बनाए तपोबल का प्रयोग कर, तप त्याग और सेवा के बल से बनाए मधुवन को तपोवन, तप त्याग और सेवा के बल से बनाए मधुवन को तपोवन, जान हाजिर है तुम्हारे प्यार के खातिर हो भगवान। ओम शांति।
मन मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरे, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरे, थाम ले तप की मशाले, पाड़ दे आलस की काली चादर, निद्र से तप काना कर अनादर, सपनों का आवेश पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल उठ चल कर तम से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी, उठ तपस्वी तूठे तो विश्व सवरेगा, अमृत वेले की है पुकार, न रुक न झुक हो जा निराधार, बढ़ चल बन युगांतर का।